हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य के जाने के बाद सुनैना बिस्तर से उठी और बाथरूम जाने लगी। पैर की चोट के कारण उसे चलने में बहुत तकलीफ हुई। वो पैर पूरा जमीन पर नहीं रख पा रही थी, मगर जैसे तैसे बाथरूम पहुंची, नहा धोकर निकली और फिर बिस्तर पर बैठ गई। रूम के दरवाजे तक पहुंचना तो दूर, सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। घड़ी देखी तो 11 बज चुके थे। भूख भी लग रही थी। उसने मोबाइल उठाया और स्वीटी को फ़ोन करने लगी, मगर फिर याद आया कि स्वीटी अपने संस्थान के लिए निकल गई होगी। सोचकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जैसे तैसे चलते हुए दरवाजे तक पहुंचकर गीता को आवाज़ लगाई। गीता दी, एक मिनट यहाँ ऊपर आना। सुनैना के बुलाने पर गीता भागती हुई ऊपर आई। उस वक्त घर में दोनों के सिवा और कोई नहीं था। आदित्य भी जाते वक्त गीता से कुछ नहीं बोला था, हालांकि थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था। उसने गीता से सुनैना का ध्यान रखने को कहा था। हाँ भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ऊपर आकर कमरे के दरवाजे के पास दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी सुनैना को देखकर गीता ने पूछा। सुनैना के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई थी और अभी भी चोट के कारण सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। सब बिल्कुल ठीक नहीं है और ये मेरा पैर, चलने में काफ़ी दिक्कत है अभी। ये पता नहीं कब तक ठीक होगा और मुझे भूख भी लगी है, तो आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी नीचे आने में? गीता तुरंत आगे बढ़ी, सुनैना को सहारा देकर पकड़ लिया और बोली, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या फ़ोन करके? और इतना दर्द है पैर में, तो फिर आप क्यों नीचे आ रही हैं? मैं आपका नाश्ता यहीं पर लेकर आ जाऊंगी ना, आप अंदर बैठिए आराम से। गीता की बात सुनकर सुनैना को भी याद आया कि वो नाश्ता यहीं मंगवा सकती थी। पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ के बावजूद वो नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। गीता की बात सुनकर वो कमरे में वापस आई और गीता ने उसे सहारा देकर बिठा दिया और फिर बोली, नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाश्ता यहीं पर ले आइए, मैं नाश्ता कर लूँगी और फिर पेन किलर ले लूँगी तो दर्द शायद कम हो जाए। गीता ने सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो सुनैना के लिए नाश्ता लेकर आई। सुनैना ने नाश्ता किया, अपनी दवा ली और बिस्तर पर लेट गई। ज़्यादा चलने फिरने से उसकी चोट से फिर से खून निकलने लगा था और बैंडेज के ऊपर से भी दिखाई दे रहा था। फिर भी सुनैना ने अपनी चोट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अभी कुछ देर पहले आदित्य के साथ हुए वाक़े के बारे में सोचने लगी। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्या हो जाता है सुनैना तुझे? आदित्य का करीब होना क्यों तेरे दिल और तन बदन को एक अलग एहसास से भर देता है? और क्यों तू बस में हो जाना चाहती है? वो तुझसे बेपनाह प्यार करता है, लेकिन तू सुनैना, क्या तू भी अब उसे चाहने लगी है? अकेले में बैठी सुनैना अपने आप से ये सवाल कर रही थी, क्योंकि उस कमरे में उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज ऑफिस। क्या है रवि, तुमने अभी तक पता क्यों नहीं करवाया इस नंबर के बारे में? बार बार ब्लैंक कॉल आ रहे हैं मुझे, और साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। पता लगाओ सब कुछ जल्दी। अपने केबिन में आते हुए आदित्य ने रवि को ऑर्डर दिया। रवि पहले से ही लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। आदित्य की बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन सर, मुझे लगता है अभी कुछ और ज़्यादा ज़रूरी है। क्या और क्या है जिस बारे में मुझे नहीं पता? दो दिन ऑफिस न आओ तो सब ऐसा ही हो जाता है। कुछ नहीं समझता तुम लोगों से, पता नहीं सैलरी किस बात की लेते हो। रवि की बात सुनकर गुस्से में आदित्य आगे बढ़ा, अपनी सीट पर बैठते हुए लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और स्क्रीन पर देखने लगा। ओ माय गॉड, ये शेयर्स, हमारे शेयर्स इतने ज़्यादा कैसे गिर गए? और तुम, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाओ। और ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुरंत एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ, मुझे अभी बात करनी है सबसे। स्क्रीन पर देखकर सब कुछ समझते हुए आदित्य ने सीरियस टोन में ऑर्डर दिया। रवि ने यस सा कहा और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गया। ये सब कुछ राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का किया धरा है। मैंने उनके साथ कंबाइंड होटल खोलने के ऑर्डर को जो ठुकरा दिया था और उसके सीईओ से मिलने के लिए भी मना कर दिया था, उसका ही बदला ले रही है वो, मिस मनस्वी राठौर। ये पीछे से हमला करने वाले कभी जीत नहीं पाते हैं, और अब तुम्हारा सामना भी आदित्य सिंघानिया से है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखकर आदित्य बोला। कुछ देर में उसका मोबाइल बजा, उसने कॉल रिसीव की और बात करने लगा। अक्षत शीशे के सामने खड़ा होकर शूट हो रहा था। पीछे बिस्तर पर बैठी नैना कुछ सोच रही थी। वो सामने देखते हुए अक्षत से बोली, अक्षत, ये हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता ना, मुझे भी काम करना है, मैं हमेशा घर में तो नहीं रह सकती। और भले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कब तक ऐसे, मैं तुम्हारे पैसों पर। नैना बोल ही रही थी कि अक्षत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। नैना अक्षत की आंखों में गुस्सा देखकर चुप हो गई। क्या मतलब कि मेरे पैसे? देखो नैना, आई लव यू एंड आई रियली डू, सच में मैं जैसा तुम्हारे लिए फील करता हूँ ऐसा मैंने आज तक किसी के लिए भी फील नहीं किया। तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, और तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और रही बात काम की, तो तुम इतनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली हो, वो भी तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अभी मैं कहीं सिफारिश करके लगवा लूंगा तो वो भी तुम्हें मंजूर नहीं होगा, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। अक्षत आगे आकर नैना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। नैना उसकी तरफ देखती रही। आज तक किसी ने इतने हक से उससे ये सब नहीं बोला था। उसे हमेशा अपना हक मांगना पड़ता था, अपने घर में भी और घर से निकलने के बाद भी। उसने बस संघर्ष ही देखा था जिंदगी में। आज जो प्यार और अपनापन अक्षत से मिल रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अक्षत के गले लग गई और बोली, इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ जाते हो तुम मुझे अक्षत? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इडियट, और अब रोने मत लगना। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फिल्म स्टूडियो छोड़ दूंगा, तो फिर तुम वहाँ पर देख सकती हो। और ये मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल कल ही ऑर्डर कर दिया था, और चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी रख सकता हूँ, और मेरी कार तो ले नहीं जाओगी तुम। नैना से दूर होते हुए अक्षत उसके चेहरे की तरफ देखा। नैना बहुत भावुक दिख रही थी और अक्षत को लगा कि वो रो देगी। वो उसे समझाते हुए बोला। नैना ने सिर हिलाया, उठी, तैयार हुई और अक्षत के साथ घर से निकल गई। अक्षत के साथ होने पर नैना को हमेशा सकारात्मक एहसास होता था। उसे लगता था कि अक्षत उसके लिए बिल्कुल सही है। ये सोचते हुए वो कार में बैठी उसकी तरफ देखती रही। क्रमशः